नमस्कार। जैसे आप जानते हैं 16 तारीख को नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है, नरसिंह जयंती है, तो उसके तैयारी में आज के प्रवचन में हम भगवान नरसिंह देव को, प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उन प्रार्थनाओं के आधार पे भगवान नरसिंह देव के गुणों की चर्चा करेंगे। और क्योंकि अभी चंदन यात्रा का उत्सव चल रहा है, भगवान जी को चंदन लगाया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा चंदन यात्रा में माधवेंद्रपुरी की लीला का भी वर्णन करेंगे। तो मैं ये शुरुआत कर रहा हूं 7वें स्कंद से, 9वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है प्रहलाद महाराज भगवान को अपनी प्रार्थना से, अपनी स्तुति से प्रसन्न कर रहे हैं। को नत्रते अखिल गुरु भगवान प्रयास उत्तारणेस्य भव संभव लोपहेतो मूढ़ेषु वै महद अनुग्रह आर्त बंधो किं तेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम न। इसका अनुवाद है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान नरसिंह देव से कि हे भगवान, हे पूरे जगत के गुरु, आपके लिए क्या मुश्किल है? आप तो बड़े आसानी के साथ सारे ब्रह्मांड के सब जीवात्मा का उद्धार कर सकते हैं। हे भगवान, आप तो सारी मानवता के मित्र हैं, आप जैसे महापुरुष के लिए मूर्खों पर दया करना जरूरी है, इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी अहेतु की कृपा मेरे ऊपर भी करोगे जो आपकी सेवा में लगे हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा यहां पर जो शब्द है प्रिय जनान अनुसेवताम नह, इसका मतलब है सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी फेवरेबल टू डिवोटीज हु एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज प्योर डिवोटी। भगवान उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो उनके शुद्ध भक्तों की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। हरि, ये भी एक भक्त है, पूरे जन्म में डिवोटी था, उसको जप के समय नींद आ गई थी, इसलिए मैं बी केयरफुल, मे बी वन ऑफ लाइक समथिंग लाइक जड़ भरत, स्मॉल मिस्टेक। राधा गोपीनाथ मंदिर में भी एक बिल्ली है, वो रोज, यू रिमेम्बर दैट, माधवेंद्रपुरी प्रो विल टेल यू डिटेल्स, रेगुलरली आते कंपाउंड में, रात के समय कम्स नियर दी व्यास आसन, समथिंग लाइक दैट। वी हैव टू थिंग्स वी कैन लर्न, रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड बी केयरफुल नॉट टू बिकम एनिमल्स अगेन। In other words, one must become the servant of the servant of the servant of the Lord. इसका अनुवाद है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के दासों के दासों के दासों का दास बनना चाहिए। अगर हम भगवान के डायरेक्ट सेवक बनना चाहते हैं वो उतना अच्छा नहीं है इतना कि भगवान के भक्तों के सेवक बनना, दासों के दास बनना। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं गोपी भर्तूर पद कमलयोर दास दास अनुदास। One should not be proud of becoming directly the servant of the Supreme Personality of Godhead. व्यक्ति को भगवान से, भगवान के डायरेक्ट सेवक बनने का इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्यादा अच्छा है कि एक शुद्ध भक्त के पास जाओ और उनके सेवकों की सेवा करो। The more one becomes the servant of the servant, the more one becomes perfect in devotional service. जितना ज्यादा हम दासों के दास बन रहे हैं उतना हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इसका अनुवाद है कि ये परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान को अगर जानना है तो परंपरा से जाना जा सकता है। हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वे कहते हैं तांदेर चरण से भक्त सने वास जनमे जनमे होए ए अभिलाष, कि मैं भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहता हूं और उनकी सेवा करना चाहता हूं। और प्रभुपाद यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन बताते हैं, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बलिहा जान मोरे, ओ लॉर्ड ओ वैष्णव प्लीज कंसिडर मी टू बी योर डॉग। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे अपना कुकुर बना लो, मुझे अपना कुत्ता मानो। व्यक्ति को वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है आसानी से कृष्ण हमें दे सकते हैं। Krishna se tomara, Krishna dite para, tomara shakati ache. Krishna jo hai, wo shuddha bhakti sampati hai. Aur agar hum shuddha bhakti ka ashray lenge, to aasani se hume Krishna de sakte hain. Prahlad Maharaj, bhakti ki seva mein lagna chahte the. Isiliye Bhagwan Krishna se bol rahe hain, Bhagwan, mujhe shuddha bhakti ke sharan do, jisse main unki seva kar sakun, aur fir unki seva ke dwara main aapko prasanna kar sakun. भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मद भक्ता पूजा दीपिका माम, एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ माय डिवोटी इज बेटर देन ट्राइंग टू एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस. मेरी भक्ति करने से ज्यादा अच्छा है मेरे भक्तों की सेवा करना. और दूसरी बात महत्वपूर्ण है ये श्लोक में कि प्रहलाद महाराज अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जैसे पतित जीवों के लिए जो इस संसार सागर में गिर गए हैं. वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से हम उनके सेवकों की सेवा कर सके. भगवान की कृपा, भगवान के लिए कृपा बरसाना मुश्किल नहीं है. और प्रहलाद महाराज इसलिए पूरी दुनिया का उद्धार करना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार के द्वारा. ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकं. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति. मैं आप सब एकत्रित भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं. भक्तों के सामने भगवान के बारे में बोलना ऐसा है जैसे गंगा का जल लेकर वापस गंगा को अर्पण करना. क्योंकि जो भी हम कृष्ण कथा बोल सकते हैं वो गुरु और वैष्णव की कृपा से ही संभव होता है. तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें दिखला रहे हैं कि भक्त की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या होनी चाहिए. प्रहलाद महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, वो सारे जीवात्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से कह रहे हैं कि आपके लिए क्या मुश्किल है, आप तो पूरे दुनिया का उद्धार कर सकते हो, इसीलिए आप सबका उद्धार करो और मेरे जैसे मूर्खों पर भी दया करो. तो ये जो मूड है प्रहलाद महाराज का, इसमें दो पॉइंट महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं. पहला है कि गोपी भरतुर पद कमलयो और दास दास अनुदास. नहीं, भगवान की सेवा सीधे करने से ज्यादा अच्छा है उनके भक्तों की सेवा करना. जैसे दक्षिण भारत में एक महान संत हुए हैं, उन्होंने अपने एक श्लोक में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 साल तक भी भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करता है, भगवान की डीटी की पूजा करता है और एक दिन, सिर्फ एक दिन एक शुद्ध भक्त की सेवा करता है, तो एक दिन की सेवा का ज्यादा महत्व है, स्पिरिचुअल पोटेंसी ज्यादा है. क्योंकि भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर आप उनके भक्तों की सेवा करते हैं. भगवान की पूजा करने से भी ऊंचा है उनके भक्तों की सेवा करना. इसीलिए भक्ति की शुरुआत जो है वो गुरु की सेवा से होती है. श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, अदो गुरु आश्रयम, फर्स्ट स्टेप इज टू टेक शेल्टर ऑफ गुरु. एक गुरु का आश्रय लेना और उनके गाइडेंस में शुद्ध भक्ति करना. अगर हम अर्च विग्रह की भी सेवा कर रहे हैं तो कभी हमें सोचना नहीं चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, हमें सोचना चाहिए कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं और मेरे गुरु उनके गुरु की सेवा कर रहे हैं और उनके गुरु की सेवा कर रहे हैं. ऐसे करते 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 कृष्ण की सेवा दासानुदास रूप में हो रही है. ये भौतिक दुनिया बहुत गंदी जगह है, यहां पर हर व्यक्ति बॉसानुबॉस बनना चाहता है. हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वामी बनूं, मैं ईश्वर बनूं. इवन कई बार भक्तों के संगति में भी हमारी इच्छा होती है कि मैं दूसरे भक्तों से ज्यादा श्रेष्ठ बनूं, मैं कमांडर बनूं, मैं प्रेसिडेंट बनूं, मैं लीडर बनूं. तो ये लोडिंग मेंटेलिटी है, स्वामी बनने की इच्छा है, वो दुख का कारण है, वो बंधन का कारण है. और सेवा करने की इच्छा है वो मुक्ति का कारण है. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस परपोर्ट में, द मोर वन बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, द मोर ही इज बिकमिंग परफेक्ट इन डिवोशनल सर्विस. जितना ज्यादा कोई व्यक्ति दास 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 अनुदास बन रहे, इसका मतलब वो भक्ति में और ज्यादा प्रगति कर रहे. जैसे महाराज कुलशेखर, महाराज कुलशेखर जैसे आप जानते हैं 12 आलवर में से एक हैं जो दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे, वो राजा भी थे, लेकिन इतने बड़े राजा होकर भी उनके मन में इतनी नम्रता थी कि वो हमेशा अपने आप को दासों के दासों के दासों का दास मानते थे। आपको पता होगा उनकी लिखी हुई किताब है मुकुंदमाला स्तोत्र, और मुकुंदमाला स्तोत्र में एक श्लोक में वो इस तरह से कहते हैं, तब भृत्य 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 भृत्येर भृत्य, 7 बार बोलते हैं मैं दासों के दासों के दासों के दासों का दास। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि दासों का दास बनना ये कोई डिग्रेडेशन है कि मेरे को डिमोशन कर दिया प्रमोशन की जगह, मैं अभी दासों के दासों को दास, चलो दासों के दास तो नहीं बन सका, चलो दासों के दास बन गया, फिर कुछ साल बाद मैं दासों के दास बनूंगा, फिर मैं भगवान का दास बनूंगा, और फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे होता है, पहले आप छोटी पोस्ट पे होते हैं, फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर इंद्र कंट्रोलर। कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब कोई भक्त पहली बार आता है तो सोचता है ओ भगवान इतने महान है, कुंज बिहारी इतने सुंदर है, मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर थोड़े सालों में उसको पता चलता है कि भगवान बोलते हैं कि पहले गुरु की सेवा करो, मेरे भक्त की, फिर गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु बोलते हैं मेरे शिष्यों की करो, वो शिष्यों की करते हैं तो बोलते हैं आप उनके मेरे मेरे असिस्टेंट की करो। ऐसे करते 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 भक्त को पता चलता है कि मुझे सब जीवात्माओं की सेवा करनी है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, सभी तो कृष्ण के दास हैं, कोई जानते हो नहीं जानते हो, सभी लोग भगवान के दास हैं। इसीलिए दासानुदास बनना मतलब न केवल वैष्णवों की सेवा करना, जो अवैष्णव हैं, जो नास्तिक हैं, जो गधे है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, उसके अंदर ही भगवान के देखना, सबको प्रणाम करना। अफकोर्स हम सेवा करने के तरीके अलग अलग हैं, हम वैष्णवों की सेवा करते हैं प्रवचन सुन के सुना के, कुत्ते बिल्ली को हम प्रवचन नहीं सुना सकते, लेकिन एक एडवांस डिवोटी होता है वो कुत्ते को भी ये देखता है कि भगवान का अंश है। और उसका उदाहरण है शिवानंद सेन। शिवानंद सेन कुछ भक्तों को यात्रा पे ले जा रहे थे जगन्नाथपुरी, और उस दौरान उनके ग्रुप में एक कुत्ता भी आ गया, करीब 200 भक्त थे और कुत्ता भी आ गया। उसने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था और नहीं उसको कोई कोई फीस भरी थी, और शिवानंद सेन सोच रहे थे ये मेरे प्रभु हैं, मुझे इस कुत्ते की सेवा करनी। अभी आप देखिए शिवानंद सेन सबसे सीनियर भक्त थे, जनरली हम सोचते हैं सीनियर भक्त मतलब खाली अच्छा से सेवा स्वीकार करना और आशीर्वाद देना, नहीं सब कुछ ठीक है भाई, मालपुआ कहां पर है, सब ठीक है, पिज्जा कहां पर है, कुंज बिहारी का महाप्रसाद, कि जब भी मैं कुंज बिहारी मंदिर में आता हूं तो यहाँ के जो भक्त हैं इतनी अच्छी सेवा करते हैं कि उस बहाने आने की इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन सच्चा सीनियर भक्त होता तो वो क्या सोचता, वो सोचता है कि मैं सेवक हूं, मैं सब कुंज बिहारी के सेवकों का सेवक हूं। तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को प्रसाद खिला रहे थे, अपने हाथों से चावल पकाकर, वो वेजिटेरियन कुत्ता था, उसको चावल पकाकर अपने हाथों से खिलाते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनको नदी पार करना था, और नदी पार करते समय वो बोटमैन नाविक ने कहा डॉग्स नॉट अलाउड, है ना, कुत्ते वाला प्रवेश नहीं, है ना, कई बार हम बिल्डिंग्स में देखते हैं ना लिखा होता है कुत्ते को अलाउड नहीं, है ना, हम पूछते हैं कौन से, दो पैर वाले या चार पैर वाले, पता। तो शिवानंद सेन बोले ये वैष्णव है इसको ले जाना है, बोले नहीं हम नहीं अलाउड। शिवानंद बोले ये लो मैं पैसे दे रहा हूं, एक्स्ट्रा पैसे, डबल पैसे, 10 गुना पैसे, इसको लेकर जाऊं। तो शिवानंद सेन क्या सिखा रहे हैं हमें कि कैसे हमें भक्तों का ख्याल रखना चाहिए, हर भक्त को मूल्यवान मानना चाहिए, चाहे वो पुरुष शरीर में हो, स्त्री शरीर में हो, वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी मंदिर से हो, किसी संप्रदाय से हो। वासुदेव, सबके हृदय में वासुदेव कृष्ण है, इसको बोलते हैं वासुदेव कुटुंब, पूरे ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है। जैसे कोई एक व्यक्ति मेरे को कह रहा था आपने अपने परिवार को छोड़ दिया, ये क्या किया आपने, मैंने बताया नहीं परिवार छोड़ा नहीं, अभी पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। वैष्णव जब भक्ति में हम फुल टाइम लगते हैं तो अपने घर को नहीं छोड़ते, लेकिन जान लेते हैं कि सब पूरा दुनिया ही हमारा घर है। तो भक्त को ये नियोफाइट मेंटालिटी है कि मैं और मेरा, लेकिन एडवांस मेंटेलिटी है कि सब कुछ कृष्ण का है। तो शिवानंद सेन आगे जा रहे थे और एक दिन उनको टैक्स भरने के लिए रोका गया। तो शिवानंद सेन भक्तों को बोले, आप सब आगे जाओ, मैं आ रहा हूं पीछे, आप आगे जाओ। और सारे भक्त आगे चले गए, वो कुत्ता भी आगे चला गया। और फिर शिवानंद सेन के आने से पहले वो कुत्ता, क्योंकि उसको प्रसाद नहीं मिला, शिवानंद सेन प्रसाद पकाते थे और किसी ने प्रसाद दिया नहीं, तो बेचारा प्रसाद की खोज में भक्तों को छोड़कर अलग चला गया। शिवानंद सेन रात को आए और भक्तों से पूछा, वो कुत्ता कहां पर है? और किसी को पता नहीं था। शिवानंद सेन इतने दुखी हुए, ओह मैंने अपराध किया, एक वैष्णव आए थे, भगवान के भक्त है ये कुत्ता, मैंने इसकी सेवा ठीक से नहीं की, धिक्कार है मुझे। और फिर उन्होंने 10 भक्तों को भेजा, जाओ जाओ ढूंढो ये कुत्ता कहां पर है। और जब कुत्ता नहीं मिला तब वो बहुत निराश हो गए और बोले, आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा, मेरे से अपराध हो गया, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। कुछ दिनों बाद वो चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहां क्या देखा, स्वयं गौरंगा महाप्रभु गंभीरा में बैठे हैं और उनके सामने वो कुत्ता आगे ही बैठा है। बाकी सब पैदल गए, कुत्ता फ्लाइट से पहुंच गया। कुत्ता पहले ही पहुंच गया। और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से नारियल की मलाई निकाल के उस कुत्ते को खिला रहे हैं और वो कुत्ता बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण। आप ऐसे धीरे बोलो जैसे 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं, जोर से बोलिए, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम। वो कुत्ता कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि बोल रहा था। वो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय हो गया। क्यों, कैसे बना महाप्रभु को प्रिय? क्योंकि वो शिवानंद सेन को प्रिय था। ये तरीका है कृपा प्राप्त करने के लिए, पहले भक्त की कृपा मिलती है फिर भगवान की मिलती है, बिना भक्तों की कृपा के भगवान नहीं मिलते। शिवानंद सेन नम्रता से उस कुत्ते के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि मेरे अपराध को क्षमा कर दो वैष्णव ठाकुर। और सबके देखते देखते वो कुत्ते ने अपना देह त्याग दिया और एक आध्यात्मिक जगत की ओर वो निकल गए, एक स्पिरिचुअल प्लेन आया उनको वापस भगवत धाम ले जाने। तो ये कुत्ते का सौभाग्य क्यों हुआ? क्योंकि वो शिवानंद सेन के कुत्ते थे, वो एक महान वैष्णव के प्रिय कुत्ते थे। तो किसी ना किसी तरीके से एक वैष्णव को प्रिय बन जाना चाहिए सेवा भावना से। जब हम वैष्णवों को प्रिय होते हैं तो भगवान को अपने आप प्रिय बन जाते। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीति पार तोमार शक्ति आचे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण इज योर प्रॉपर्टी, कृष्ण वैष्णव की संपत्ति है और वैष्णव चाहें तो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं तो आपको शुद्ध भक्ति कृष्ण कृष्ण की प्राप्ति दे सकते हैं। इसके असंख्य उदाहरण है शास्त्रों में। प्रहलाद महाराज इस श्लोक के कुछ श्लोक पहले क्या बोलते हैं, मैं तो अंधे कुएं में गिरा हुआ था जिसमें सांप भरे हुए हैं। भयानक जगह है, नहीं, कुएं में गिरना उसके अंदर सांप। मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने मुझे इस कुएं से बाहर निकाला है, इसलिए मुझे नारद मुनि की सेवा करनी है। मैं आपकी सेवा भी डायरेक्टली नहीं चाहता, मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने मुझे बाहर निकाला है, मैं उनकी सेवा करना चाहता। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वो कहते हैं, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाई चे केबा, बिना वैष्णव की सेवा किए किसी का उद्धार नहीं हुआ है और न होगा। और स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए हैं, वो भगवान के धाम में मंजरी हैं, लेकिन वो भी जब धरती पे आते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करते। लोकनाथ गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि जाओ तुम लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बोले, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना एडवांस नहीं हूं भक्ति में, आप ज्यादा एडवांस्ड हो, आपको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो गए हैं, मुझे नहीं हुए। फिर भी नरोत्तम बोले, ठीक है आप दीक्षा नहीं दें, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, छिप के सेवा करते। जहां पर लोकनाथ गोस्वामी टॉयलेट शौच क्रिया के लिए जाते, वो जगह को अपने हाथों से साफ करते, एकदम स्वच्छ रखते, पानी रखते अगले दिन के लिए, एक दिन दो दिन। अंत में लोकनाथ गोस्वामी के मन में शंका हुई कि कौन है व्यक्ति जो इस तरह मेरी सेवा कर रहा है, और झाड़ियों के पीछे से एक दिन छुप के देखा, नरोत्तम। नरोत्तम तुम राजकुमार हो, एक राजा के पुत्र होकर तुम भंगी का कार्य कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, क्यों कर रहे हो? नरोत्तम बोले कि मैं आपका सेवक हूं, चाहे मैं राजा हूं या फकीर हूं, बस मुझे आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा के सिवाय मुझे भगवान को प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं। तब लोकनाथ गोस्वामी ने निश्चय किया कि मैं उनको शिष्य बनाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं कि वो सफाई कर रहे थे और बोले कि वेब कैम लेकर आओ, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, देखो मैं सफाई कर रहा हूं, बाद में कुंज बिहारी 500 साल बाद लोग देखेंगे। नहीं, हम थोड़ी सेवा करते हैं, हम सोचते हैं कि 3 बार हरि बोल होना चाहिए। नहीं, वी वॉन्ट रिकॉग्निशन, नेचुरल है, ह्यूमन बींग बद्ध जीव में हरेक को रिकॉग्निशन चाहिए होता है। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है कोई बोले लेक्चर के बाद बहुत अच्छा लेक्चर था, तो अच्छा लगता है। लेकिन शुद्ध भक्त ये प्रसिद्धि के पीछे नहीं होते, शुद्ध भक्त सोचते हैं परमात्मा जो भगवान है वो जानते हैं कि मैं क्या सेवा कर रहा हूं, मैं उनके प्रसिद्धि के लिए कर रहा हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, प्रसिद्धि के लिए नहीं। ऐसे ही और एक उदाहरण है शास्त्र में, एक और महान भक्त राजा प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, मैं नहीं, इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। सारे भक्त बोले नहीं, राजा प्रताप रुद्र को निवेदन किया, सॉरी चैतन्य को निवेदन किया, राजा प्रताप रुद्र बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत गुणवान है, नम्र है, सेवा भावना है। सब सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोले एक सुंदर बर्तन में बहुत अच्छा दूध रखा गया है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर उस दूध में एक बूंद भी शराब डाला जाए या जहर डाला जाए तो अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही राजा के अंदर इतने सारे गुण हैं, लेकिन एक ही दुर्गुण है और वो है कि वो राजा है, इसीलिए मैं उससे नहीं मिलना चाहता। बार बार भक्त निवेदन कर रहे थे, लेकिन अंत में भगवान ने कृपा की उसके ऊपर। क्यों? रामानंद राय जो कि महान भक्त हैं, जब महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जगन्नाथपुरी में रहो, तो रामानंद राय को परमिशन लेनी थी, अनुमति लेनी थी, किससे? राजा प्रताप रुद्र से। राजा प्रताप रुद्र ने बड़े खुशी से अनुमति दे दी, बोले आप जाओ, आप जाओ, आप सेवा करो भगवान की, मेरा तो भाग्य नहीं है, आप जाओ। और क्योंकि उसने रामानंद राय की सेवा की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तो हम हर शास्त्र में देखते हैं कि पहले भक्त की कृपा मिलती है और उसके द्वारा भगवान की कृपा मिलती है। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है और सबके सामने राजा प्रताप रुद्र अपने हाथों से झाड़ू लेकर भगवान जगन्नाथ के रास्ते को सफाई कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि नम्र सेवा ही भगवान को प्राप्त करने का सरल तरीका है। जैसे आप सब वैष्णव मिलकर राधा वृंदावन चंद्र के लिए मंदिर निर्माण कर रहे हैं, कोई भी सेवा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो या फंड रेजिंग हो या जो भी आप कर रहे हैं, ये जानना चाहिए कि ये सेवा जो है ये भगवान की कृपा को प्राप्त करने का तरीका है। कोई व्यक्ति कह सकता है भगवान कृपा करो कृपा करो, लेकिन अगर हम वास्तव में कृपा चाहते हैं तो उसको सेवा भावना से प्रकट करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा जो है वो उनके सेवकों की सेवा करने से आसानी से प्राप्त हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राजा प्रताप रुद्र से मिले नहीं, लेकिन रथ यात्रा के समय जब एक बार भगवान जगन्नाथ जी का रथ बालगंडी में रुका हुआ था, थोड़ी देर के लिए रथ वहीं स्थगित था और सारे भक्त अलग अलग पेड़ों के नीचे विश्राम कर रहे थे, उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को कहा, दिस इज अ गुड टाइम, ये अच्छा अवसर है, अभी जाओ चैतन्य महाप्रभु के सेवा करो, गो एंड सर्व लॉर्ड चैतन्य। राजा प्रताप रुद्र सादे वस्त्र धारण किए और हल्के से भगवान की सेवा करने लगे और सेवा के साथ साथ भगवान को कुछ श्लोक सुनाने लगे, क्योंकि वैष्णव की सेवा का मतलब यह भी होता है कि वैष्णव को कृष्ण के बारे में सुनाना, ये भी सेवा। जब माधवेंद्रपुरी जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनके शिष्य ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी उनकी सेवा कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? क्योंकि उस समय वृद्ध अवस्था के कारण माधवेंद्रपुरी चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, मलमूत्र मार्जन भी नहीं कर सकते थे, तो उनके प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी अपने हाथों से सब सफाई करते थे और साथ में उनको कृष्ण लीला सुनाते थे। तो माधवेंद्र पुरी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, मे यू बिकम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, आप कृष्ण के महान भक्त बनो। तो गुरु का आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त होता है, सेवा भावना से। माधवेंद्र पुरी के आशीर्वाद से ईश्वरपुरी इतने महान भक्त बने कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। जब राजा प्रताप रुद्र भगवान की सेवा कर रहे थे तब वो गोपी गीत रास पंचाध्याय से कुछ श्लोक गा रहे थे और उसमें से एक श्लोक जब वो गाने लगे महाप्रभु को विशेष अच्छा लगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात भूवि गृणंती ये भूरी दाजना। इसका अनुवाद है कि भगवान कृष्ण आपकी कथा जो है वो अमृत के समान है। अमृत, अमृत मतलब जो मृत्यु से परे ले जाते हैं। इस दुनिया में कई प्रकार के अमृत मिलते हैं, कई बार कोई कोल्ड ड्रिंक्स का नाम अमृत होता है लेकिन वो पीने के बाद भी व्यक्ति मर जाते हैं। देवलोक में जाओ तो देवता तो हमेशा अमृत पीते रहते हैं लेकिन फिर भी डर लगता है कभी कोई राक्षस हिरण्यकशिपु आ जाएगा। लेकिन जो अमृत हमें चाहना चाहिए वह कृष्ण कथा अमृत, क्योंकि कृष्ण कथा का पान करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवत तमें दोनों कृष्ण कथा है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कृष्ण के शब्द हैं और श्रीमद् भागवत कृष्ण के बारे में है। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण के बारे में या कृष्ण के भक्तों के बारे में। हम पांडवों की कथा सुनते हैं कैसे पांडव वाराणावत में थे, उनको कौरवों ने जलाने का प्रयास किया। आज सवेरे मैं एक क्लास में डिस्कस कर रहा था कि जब पांडव भागने लगे तो उनको तेजी से भागना था और चार भीमसेन के साथ अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव और उनकी माता कुंती थी। भीमसेन चारों को पांचों को अपने गोद में लेकर तेजी से दौड़ रहे थे और इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनके चलने से हवा से पेड़ भी हिल रहे थे क्योंकि वायु के पुत्र हैं। तभी कोई बोलेगा प्रभु जी इसमें क्या है, कोई एक फैमिली है दौड़ रहे हैं उसको क्या डिस्कस करना है, इसमें स्पिरिचुअल चीज क्या है। लेकिन ये पांडव हैं जो कृष्ण के भक्त हैं, जो भी चीज कृष्ण से संबंधित होती है वो दिव्य हो जाती है। नहीं तो हमें महाभारत में क्यों इंटरेस्ट है? प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा हुआ कि नहीं पता नहीं, पाकिस्तान के साथ तीन लड़ाई हुए, वियतनाम लड़ाई हुए, इराक लड़ाई हुए, अभी होते ही रहते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं डिस्कस करते उसको? क्योंकि उसमें कृष्ण का वर्णन नहीं है, हमारी रुचि कृष्ण में। तो जब महाराज प्रताप रुद्र ने यह श्लोक बोला तब कथामृतम, आपकी कथा जो अमृत के समान है, श्रीमद आततम सौभाग्य देने वाली है, श्रवण मंगलम, और जो ये कथा दूसरे को सुनाते हैं वो भूरीदा, वो कल्याणकारी व्यक्ति है। ये सुन के राजा प्रताप रुद्र के इस गुणगान को सनकर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उठ गए, बोले भूरीदा भूरीदा, उनको गले लगाया, उनको तुम्हें कौन, आप कौन हो? आचंबित आईल मोर पियाईल कृष्ण लीला अमृत, आप कौन हो, कहां से अचानक आके मुझे इस कृष्ण कथा का पान कराया? तो राजा ने अपनी पहचान दी। राजा ने यह नहीं कहा मैं महाराज प्रताप रुद्र हूं, आप देख नहीं रहे रथ यात्रा कौन अरेंज कर रहे, पूरा स्पॉन्सर प्रोडक्शन डायरेक्टर मैं ही हूं। राजा प्रताप रुद्र हाथ जोड़ के बोले आप मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि अगर आप ये श्लोक को याद करते हैं और इसके अनुसार जीवन बिताते हैं तो आप निश्चित भगवत धाम जाएंगे। आप मेरे पीछे बोलिए, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कोर ए मोर आश, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास। द किंग रिप्लाइड आई एम द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, मैं आपके दासों का दास हूं। और वैसे नहीं बोल रहे मैं दासों का दास हूं, थोड़े साल बाद दास बन जाऊंगा फिर बॉसों का बॉस बन जाऊंगा, नहीं, वो बोले दास भृत्येर भृत्य करो ए मोर आश, माय एम्बिशन इन लाइफ इज टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मेरी इच्छा क्या है मैं आपके दासों के दासों का दास बना रहा। तो ये चेतना जो है वो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज भी प्रकट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं भगवान मुझे आपके भृत्य की सेवा दो, मुझे आपके सर्वेंट का सर्वेंट बनाइए। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के परपोर्ट में लिखते हैं कि जो राजा प्रताप रुद्र ने मांगा वही वरदान प्रहलाद महाराज ने मांगा, वही वरदान ध्रुव महाराज ने मांगा, वही वरदान श्रीधर खोला बेचा ने मांगा, और वही वरदान हमें मांगना चाहिए। समझो आज रात को भगवान कुंज बिहारी आपके सामने आके पूछते हैं आपको क्या चाहिए, या गौर नेताई पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो हमें भी यही मांगना चाहिए, जस्ट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर सर्वेंट्स। आपके सेवकों की कोई भी सेवा हो, चाहे वो पानी भरना हो, झाड़ू लगाना हो, लेक्चर देना हो, मंदिर बनाना हो, कोई भी चीज जिसे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। आई एम सिंपली अ सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दैट इज माई ओनली होप टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ऐसे एक महान भक्त हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं आज, जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी, ओरिजिनल माधवेंद्र पुरी, लॉर्ड्स डियर डिवोटी। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं, और वो अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि भक्त को सेवा में कितनी भी कठिनाई आए सेवा नहीं त्यागनी चाहिए। क्योंकि अभी ये सीजन चल रहा है चंदन यात्रा का, आज से 3 दिन पहले 6 तारीख को हमने चंदन यात्रा मनाया, और आप जानते हैं कि चंदन यात्रा के ये 3 हफ्ता में भगवान को हम चंदन लगाते हैं। ये जानना चाहिए कि भगवान भी व्यक्ति हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी है, बोलेंगे ये क्या है तुम किसी मूर्ति को चंदन लगा रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं उनको पता नहीं है कि भगवान भी भक्तों की भावनाओं को स्वीकार करते हैं। भगवान को भी गर्मी लगती है, भगवान को भी सर्दी लगती है, भगवान को भी आंसू आते हैं, भगवान भी हंसते हैं, भगवान भी रोते हैं। एब्सोल्यूट इज सेंशियंट, दाओ इज प्रूव्ड, परम सत्य जो है भगवान है उनमें भी भावनाएं हैं। जैसे एक बार एक शिष्य प्रभुपाद के पास गए और बोले ये आर्य समाजी हैं, ये बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, और ये आप मूर्ति की सेवा कर रहे हो, भावुकता है, आप भगवान के सामने प्लेट रख रहे हो तो भगवान खाते थोड़ी हैं, देखो आपने 4 गुलाब जामुन रखे, 4 के 4 वापस आ गए, भगवान ने क्या खाया, भगवान खाते नहीं है, ये तो आपका मेंटल कॉन्कॉक्शन है। तो प्रभुपाद से पूछा इसके बारे में, प्रभुपाद जी बोले हम भगवत गीता पे विश्वास करते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि जब कोई प्रेम से मुझे पत्ता या फल या जल अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूं, अश्नामी, अश्नामी मतलब मैं खाता हूं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं खाता हूं, और आप कह रहे हैं कि नहीं खाते, किस पर भरोसा करें, परम सत्य श्री कृष्ण भगवान पर या तुम्हारे जैसे लोफर पर। यू बिलीव इन कृष्ण, जब कृष्ण बोलते हैं भगवान उवाच, सबसे बड़ी अथॉरिटी कृष्ण है, कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो हमें जानना चाहिए कि जब हम भगवान को चंदन लगा रहे हैं तो शायद इतने भक्त चंदन घिस रहे हैं हमको लगेगा कि भगवान को पता भी नहीं होगा किसने किसने घिसा है, लेकिन भगवान वास्तव में देख रहे हैं कि यस ये भक्त जो है चंदन घिस रहे हैं। देखिए राधेश्याम प्रभु जी यहाँ के प्रेसिडेंट है लेकिन वो भी चंदन घिस रहे हैं। वी शुड नॉट थिंक ओ आई एम अबव ऑल एनी सर्विस, वी आर रेडी। तो माधवेंद्र पुरी की मैं कथा संक्षिप्त में बताऊंगा, आप सब लोग जाग रहे हैं ना, नींद आ रही हो तो बोलो हरी हरी, गुड ठीक है, अभी आप जाग जाइए। ओके, ये कहानी की शुरुआत वृंदावन से होती है। माधवेंद्र पुरी इतने शुद्ध भक्त थे कि उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता था, वो कहां जा रहे हैं, वो कभी कभी चलते चलते गिर पड़ते थे एक्सटेसी में और पुकारते कृष्ण कृष्ण, और कभी कभी उठते वो आकाश में बादल को देखते और नीले बादल को देखकर उनको कृष्ण की स्मृति होती और वो कृष्ण को याद करते ही बेहोश हो जाते थे, फिर उठते थे। वो भगवान के धाम से कल्पवृक्ष के अवतार हैं, गोलोक वृंदावन से, और शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज अ रूट ऑफ द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड ही इज अ ट्रंक ऑल्सो, वही उस भक्ति का जो वृक्ष है उसके जड़ माधवेंद्र पुरी है। क्योंकि हमारी परंपरा में जो कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी की पूजा होती है ये माधवेंद्र पुरी ने शुरू की। तो माधवेंद्र पुरी अकेले भ्रमण करते थे और भ्रमण करते करते वो वृंदावन आए, वृंदावन में 12 वन, ताल वन, मधुवन, कुमुद वन, बिल्ववन, निस्सब वृंदावन और भंडीरवन, सारे वन में भ्रमण किया, फिर वो गोवर्धन में आए, गोवर्धन की परिक्रमा की। गोवर्धन के पास एक अति रमणीय स्थान है जिसको बोलते हैं गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड के पास बैठे हुए थे और उस समय एक छोटा सा बालक आया और माधवेंद्रपुरी के पास आकर कहने लगा, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी ये लो, मैं आपके लिए कुछ दूध लाया हूं। आप क्यों यहां पर बैठे उपवास कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो आप? माधवेंद्रपुरी ने अपनी नजर ऊपर उठाई और जब इस बालक को देखा, उसके सौंदर्य, उसकी मिठास, उसके रूप और लावण्य को देखते ही उनकी सारी भूख और प्यास चली गई। वो सोचने लगे, कौन है ये, कौन है बालक, कहां से आया है? माधवेंद्रपुरी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? तो बालक कहने लगा, गोपामी एक ग्रामवासी, मैं इसी गांव का रहने वाला ग्वाला हूं और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। कोई व्यक्ति मांग के खाते हैं और जो नहीं मांगता उसके लिए मैं लेकर आता। माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति का पालन कर रहे थे, इसको अजगर वृत्ति बोलते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ भगवान पर निर्भर रहना, कुछ मांगना भी नहीं, पकाना भी नहीं और प्रसाद हॉल में भी नहीं जाना, बस लेटे रहना और कुछ आ जाए तो हरे कृष्णा, नहीं आए तो हरे रामा। आप ये ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत, जब मैं इसको, हमने पहले ज्वाइन हुआ 1989 में, तो मैंने ट्राई किया था 2 दिन के लिए, लेकिन फिर तीसरे दिन मैं अपने आप ड्यूटी रूम में गया और ऑफर्ड भोगा नहीं, ऑफर्ड प्रसाद खा लिया। वेरी डिफिकल्ट। तो माधवेंद्रपुरी उस स्तर पे थे, लेकिन एक है कि जो उस स्तर पे होता है उसके लिए भगवान भेजते भी हैं। वी कैन नॉट इमिटेट। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरी सेवा में लगे हैं, उनको जो चीज आवश्यक है, वहां में अहम पठामी, अहम नहीं, मैं खुद लेकर आता हूं। मैं अपने भक्त की पर्सनल सेवा करना चाहता हूं। जैसे भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे भगवान भक्त की सेवा करने चाहते। माधवेंद्रपुरी ने उससे बातचीत करना शुरू किया और फिर वो बालक कहने लगा कि यहां पे कुछ माताएं आए थे, कुछ गोपियां, और वो कुएं से पानी निकाल रहे थे, और जब उन्होंने आपको देखा तो आपको भूखा देखकर उन्होंने मुझे बताया, देखो एक स्वामी जी आए हुए हैं सन्यासी, आप उनके पास जाओ और हमारी तरफ से दूध दे दो, मुझे जाना है, क्योंकि देखो कुछ गाय मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे गायों का दूध भी निकालना है, अभी मैं फिर से लौट कर आऊंगा और ये बर्तन आपसे वापस ले लूंगा। और वो बालक चला गया और माधवेंद्रपुरी वो दूध को पीने लगे और पीने के बाद वेट कर रहे थे, कब आएगा बालक, कहां गया बालक? वो दाएं बाएं सब जगह देख रहे थे, कब आएगा, कब आएगा? इस तरह से करते करते रात्रि हो गई और माधवेंद्रपुरी विश्राम करने लगे। रात के समय उनको स्वप्न आया और स्वप्न में वही बालक फिर से आया, बोला, माधवेंद्रपुरी मुझे बाहर निकालो, वो देखो मैं जमीन के अंदर हूं, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, वो जल्दी बाहर निकालो। माधवेंद्रपुरी जब नींद से उठे तो सोचने लगे, अरे ये कौन, इसका मतलब वो भगवान कृष्ण थे, वो बालक कृष्ण था, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि कृष्ण स्वयं आए और मैं पहचान नहीं पाया। अपने आप को कंडेम करने, डांटने लगे, लेकिन फिर वो सोचने लगे, अब भगवान की आज्ञा पालन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब भक्तों को लेकर कुलाड़ी और सब अस्त्र जो खुदाई करने के लिए अस्त्र होते हैं उससे जाकर खुदाई करने लगे। जैसे भगवान राधा वृंदावन चंद्र भी बहुत उत्सुक हैं, राइट? राधे श्याम प्रभु मुझे बोल रहे थे, राधा वृंदावन चंद्र बोल रहे हैं, जल्दी मेरे मंदिर बनाओ, नहीं मैं बहुत समय से बॉक्स में हूं, मुझे बाहर निकालो, मेरे को भूख लग रही है, नहीं? तो हम सबको उत्सुकता होनी चाहिए राधा वृंदावन चंद्र की सेवा के लिए। और मेरे ख्याल से अगले साल, भगवान की इच्छा, नेक्स्ट ईयर, राइट, अगले साल इस समय से पहले ही आप देखोगे राधा वृंदावन चंद्र 6 ऑफरिंग स्वीकार कर रहे हैं। और वी शुड थिंक, ऐसा नहीं कि ओ भगवान तो भगवान है, अपने आप भी खा लेंगे, मुझे क्यों ऑफरिंग करने, नहीं? मायावादी लोग सोचते हैं भगवान की सेवा करना जरूरी नहीं है, लेकिन भक्त क्या सोचते हैं कि गॉड wants to accept my service. इसे यशोदा मैया क्या सोचती है? वो सोचती है कि कृष्ण भगवान है. नहीं, ऐसा नहीं सोचते. वो सोचते हैं कि कृष्ण, मेरे को कृष्ण की सेवा करना है. इवन जो भक्त जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, वो भी भगवान की सेवा करना चाहते. तो ये सोचना चाहिए भक्त को कि हालांकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि भगवान के लिए इंतजाम करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए मंदिर बनाना. कभी कभी भक्तों को लगता है ऐसे कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है. नहीं, भगवान अपना मंदिर खुद ही बना लेंगे और बन जाने के बाद मुझे मैसेज भेज देंगे. भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन तुम लड़ाई करो. हालांकि भगवान बोलते हैं युद्ध पहले ही हो चुका है, सारे क्षत्रियों की मृत्यु हो गई है, कर्ण और दुर्योधन और भीष्म और द्रोण, लेकिन फिर भी तुमको लड़ना होगा. भगवान ये नहीं कहते अर्जुन मैं लड़ाई कर रहा हूं, तुम पीछे सो जाओ, फिर उठा दूंगा आपको बाद में. तो एक भक्त को सोचना चाहिए कि हालांकि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, मुझे संघर्ष करना है भगवान के लिए. अरे मंदिर का निर्माण भी एक बहुत संघर्ष है, आसान चीज नहीं है, लेकिन जितना संघर्ष है उतना हमारे भक्ति के लिए अच्छा है. अगर आसान होगा तो हमें अपने प्रेम को भगवान के सामने प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलेगा. तो माधवेंद्रपुरी सब भक्तों की सहायता से अर्च्य विग्रह को बाहर निकालते, इतना भारी होता है कि उठाना मुश्किल होता है. स्वयं माधवेंद्रपुरी अपने हाथों से भगवान को लेकर जाते हैं, फिर उनका अभिषेक कराया जाता है. गोविंद कुंड से 900 मटके पानी लेकर भगवान को अभिषेक कराते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं. और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत डिटेल में बताते हैं, पंचगव्य पंचामृत से स्नान कराना, फिर भगवान को सारे बड़े बड़े पर्वत, चावल के पर्वत, चपाती के पर्वत, सब्जियों के पर्वत, स्वीट राइस का कुंड, इतने सारे आइटम्स भगवान को भोग लगाए जाते हैं. ठीक उसी तरीके से जैसे 5000 साल पहले गोवर्धन में अन्नकूट उत्सव मनाया गया था. तो इस तरह से भगवान की अच्छी सेवा करते हैं और फिर ये प्रसाद सबको वितरित किया जाता है. इसके बाद माधवेंद्रपुरी स्वयं थोड़ा सा दूध पी के विश्राम करते हैं. बाद में कोई भक्त आकर, अभी समय मंदिर के लिए उनके पास धन नहीं होता, तो बस एक शिला ही मंदिर होती है, एक पत्थर ही, एक पत्थर पे गोपाल जी जो फेमस विग्रह है, जो आज नाथद्वारा में देखा जाता है. आपने दर्शन किए हैं कभी? नाथद्वारा में डीटीज हैं जो जिनका बायां हाथ ऊपर है, जैसे मुंबई में राधा गोपीनाथ मंदिर में वही डीटीज है श्री गोपाल जी. तो ये जो विग्रह हैं, इनके लिए मंदिर नहीं था उस समय, सिर्फ एक शिला थी और पीछे और एक शिला बस. फिर एक भक्त आए, उन्होंने बोला मैं कुछ धन देना चाहता हूं भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए. फिर कोई भक्त आए जिन्होंने अपनी तरफ से गाय दान किए. इस तरह से सब प्रकार से भगवान के लिए सुविधाएं प्रकट हो गई, क्योंकि जब भगवान स्वयं आते हैं तो सुविधाएं अपने आप आ जाते हैं. हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवान की सेवा हम बढ़ाना चाहते हैं तो कहां से धन आएगा. भगवान कहीं ना कहीं से भेज देते हैं. ऑफकोर्स प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन भक्त को साथ साथ जानना चाहिए कि कृष्ण ही है वो सब कारणों के कारण है. अगर कृष्ण की सेवा अच्छे तरीके से हो रही है तो अपने आप कृष्ण सब सुविधाएं दे देते हैं. तो इस तरह से सब प्रकार से भगवान की अच्छी सेवा शुरू हो जाती है. और उसके बाद कुछ भक्त आकर मंदिर में सोना दान करते हैं भगवान के लिए, कुछ चांदी और कुछ सुगंधित चीजें अर्पण करते हैं. और एक अमीर क्षत्रिय आता है, और आपने देखा होगा ये मंदिर आज भी गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पे एक सफेद रंग का मंदिर है शंकरशन कुंड के पास. और ये मंदिर का निर्माण उस क्षत्रिय ने किया. और उसके बाद दो ब्राह्मण भगवान की सेवा में लगे थे. एक दिन माधवेंद्रपुरी को स्वप्न आया, और स्वप्न में गोपाल जी फिर से प्रकट हुए और कहने लगे माधवेंद्रपुरी मेरे शरीर की गर्मी दूर नहीं हुई, हालांकि आपने मुझे वहां से बाहर निकाला और स्नान कराया और मुझे अभी चंदन की जरूरत है. आप जाओ जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से मेरे लिए चंदन लेकर आओ. माधवेंद्रपुरी सवेरे उठे, उन्होंने मंदिर की देखभाल दो भक्तों को सौंप दी और स्वयं निकल पड़े जगन्नाथपुरी. अभी आप सोचिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी करीब 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और उस समय इंडियन रेलवेज नहीं थे कि आप तुरंत ट्रेन टिकट बुक कर दें. माधवेंद्रपुरी पैदल निकल पड़े. तुम्हारे सेवा ते जई ते दुख सही ते परम सुख। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त की चेतना क्या होती है कि जितने भी कठिनाई आ रहे हैं, जितने भी दुख आ रहे हैं भगवान की सेवा में, वो सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपना शरीर त्यागना चाहते थे कुरुक्षेत्र में। आप बोलेंगे कोई व्यक्ति वृंदावन में छोड़ना चाहता है, कोई जगन्नाथपुरी में, कोई मायापुर में। अब भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं मैं कुरुक्षेत्र में शरीर त्यागना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में रथ यात्रा के समय आप जानते हैं जब भगवान कृष्ण गोपियों से मिलते हैं तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिल रहे हैं करीब 100 साल के बाद और अपने प्राणनाथ को देखकर उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ राधा रानी सोच रहे हैं कि ये कृष्ण है लेकिन इनका वेश कहां, वो मुरली वदन कहां, वो मोर का पंख धारण करने वाले वृंदावन विहारी यमुना तीर पर रमण करने वाले कृष्ण, और कहां ये पर द्वारकाधीश कृष्ण जो इतने वैभव के साथ है, जिनके सिर के ऊपर सोने का मुकुट है। मैं कृष्ण को वापस वृंदावन ले जाना चाहती हूं। इस तरह से श्रीमती राधा रानी मनी मन रथ तैयार करते हैं जिसमें जगन्नाथ मतलब कृष्ण और साथ में दाऊ जी यानी बलराम जी और सुभद्रा को वापस वृंदावन ले जाना चाहते हैं। और उस लीला में जो श्रीमती राधा रानी की लीला है उस लीला में भक्ति विनोद ठाकुर मदद करना चाहते हैं मंजरी भाव में। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इच्छा करते हैं कि मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी को मदद की जरूरत है। तो एक भक्त वो ये सोचता है कि मैं वहां पर सेवा करूं जहां पर बहुत आवश्यकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सेवा वहां करनी है जहां पर कंफर्टेबल है। यहां पर मैं सेवा करूंगा क्योंकि एयर कंडीशन रूम है और यहां पर तो बहुत गर्मी है, चलो किसी और को आशीर्वाद दे देंगे सेवा करने। जैसे अभी आप देखते हैं कई भक्त किचन में सेवा करते हैं, मई के महीने में किचन में सेवा करना कोई आनंद की बात नहीं लगती, नहीं बहुत तकलीफ होती, लेकिन फिर भी भक्त सेवा करते रहते हैं। शिल प्रभुपाद माधवेंद्र पुरी के उदाहरण है। जैसे माधवेंद्र पुरी चंदन लाने के लिए गए भगवान के लिए, ऐसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए नाम प्रचार करने के। जैसे यहां पर गोपाल जी को गर्मी लग रही है और वो बोल रहे हैं चंदन लेकर आओ, ऐसे ही भगवान को एक गर्मी है। बद्ध जीवों के कष्ट, जो जीव कृष्ण से विमुख हो गए हैं, जो कृष्ण को भूल गए हैं, उनका दुख देखकर भगवान को भी दुख होता है और वो भगवान की उस गर्मी को दूर कर सकते हैं हरि नाम के चंदन द्वारा। जब सारे वैष्णव मिलकर सच्चे दिल से गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस नाम संकीर्तन से जो बद्ध जीवों के तकलीफें हैं, जो क्लेश हैं, वो दूर हो जाते हैं। इस घोर कलयुग में सिवाय हरि नाम के और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यत्। सिर्फ एक ही उपाय है, वो है हरि का नाम लेना। तो जब वैष्णव भगवान के नाम प्रचार में सहायता करते हैं, या तो पुस्तक वितरण करके, या मंदिर निर्माण करके, या प्रवचन देके, या मंदिर में भगवान के लिए सेवा करके, या वस्त्र सिला के, ये सब सेवा करना भी भगवान को चंदन लगाने के समान है। ये सेवा से भगवान की जो गर्मी है, जो भगवान के हृदय में चिंता है, बद्ध जीवों के दुखों की जो चिंता है, भक्त उस चिंता को दूर करने में सहायता करते। तो माधवेंद्र पुरी निकल पड़े अकेले चंदन के लिए और भ्रमण करते करते वे शांतिपुर में पहुंचे। शांतिपुर में अद्वैताचार्य से मिले और अद्वैताचार्य को उन्होंने दीक्षा प्रदान की। जैसे आप जानते हैं अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। इसके बाद माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में वो एक मंदिर में पहुंचे जिसका नाम है गोपीनाथ रेमुना में। इसकी बहुत प्राचीन कहानी है। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी भी वहां पर आए थे और यह स्थान बहुत रमणीय है, बहुत सुंदर है, इसीलिए इसका नाम हो गया रेमुना। तो वनवास के समय जब भगवान राम सीता माई के साथ आए तब भगवान से सीता माई ने प्रश्न पूछा कि आपका अगला अवतार कैसा होगा, आपका रूप कैसा होगा। तो भगवान ने एक शिला ली, एक पत्थर लिया और अपने तरकस से एक बाण निकालकर उन्होंने शिला पे भगवान का कृष्ण का रूप बनाकर दिखाया, ये मेरा रूप होगा। वो रूप इतना मनोहर था कि देखकर सीता रानी ने कहा कि मैं इसकी सेवा करना चाहती हूं। तो कुछ समय तक सीता महारानी ने सेवा की, उसके बाद फिर बहुत लोग सेवा करते रहे। और अब माधवेंद्र पुरी जब वहां पहुंचे तो उसकी सेवा उड़ीसा में जो पुजारी है वो कर रहे थे। माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ के दर्शन किए और ये रूप को देखकर उनके आंखों से आंसू आने लगे और वो गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आपके गोपीनाथ जी को क्या भोग लगता है? माधवेंद्रपुरी क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोपीनाथ को क्या क्या भोग लगता है? जनरली कोई विजिटर क्या पूछेगा ये प्रश्न कि भगवान को क्या क्या भोग लगता है? किस लिए पूछेगा? वो सोचेगा फिर 12:30 बजे के बाद महाप्रसाद में क्या क्या मिलेगा, है कि नहीं? जनरली मेरे जैसे बद्ध जीव की है। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्यों पूछ रहे थे? माधवेंद्रपुरी इसलिए पूछ रहे थे, वो सोच रहे थे ये अच्छा मंदिर है, यहां पर हाई स्टैंडर्ड की पूजा की जाती है, मैं वैसा ही भोग गोपाल जी को लगाना चाहता हूं। तुमने पुरोहित से पूछा क्या भोग लगता है? पुरोहित ने सब आइटम्स बताए और विशेष बताया शाम के समय भगवान को खीर का भोग लगता है और एक खीर का नाम है अमृत केली। और एक खीर इतनी मीठी, इतनी मधुर है कि इसके बराबर के एक ही खीर है और वो है यही खीर है। इसके बराबर कुछ है ही नहीं, उपमा है ही नहीं इसका, इसका कोई पैरेलल है ही नहीं। पृथ्वी ते ऐसे भोग कहां नहीं यार, पूरे दुनिया में ऐसे खीर कहीं भोग नहीं लगता। माधवेंद्रपुर सोचने लगा अगर इतनी अच्छी खीर है तो मुझे यही खीर गोपाल जी के लिए खिलानी चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे पहले टेस्ट करना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी मन ही मन सोच रहे थे, वो इतने नम्र थे, त्रिनादपि सुनिजे न तरोरी व सहिष्णु न, वो सोच रहे थे मांगना भी ठीक नहीं है। वो सोचने लगे भगवान से, पुजारी से मांगना ठीक नहीं है, तो मैं यही बैठता हूं। और अगर मेरे बिना मांगे अगर कोई पुजारी स्वयं आकर महाप्रसाद लाकर दे देते हैं तो फिर मैं वैसा ही खीर गोपाल जी के लिए बना सकता। फिर वो सोचने लगे ओह कितना मैं पापी हूं, देखो भगवान को भोग लग रहा है और मैं स्वयं खाने की सोच रहा हूं, मैं लायक नहीं हूं इस मंदिर में बैठने के। और मंदिर को छोड़कर दूर मार्केट में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माधवेंद्रपुरी का एक गुण था कि वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, अगर कोई बिना मांगे दे देता था तो वो स्वीकार कर लेते थे। और परमहंस अवस्था पर थे और वो आहार और निद्रा से ऊपर थे, हम इसकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके पदचिन्हों पे चल सकते हैं कि भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंडेंट रहना। कृष्ण मेरे माता हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं, जो भी चीज मुझे आवश्यक है वो कृष्ण देंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य कल मेलकोटे में उनका आविर्भाव दिवस मना रहे थे, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य की शिक्षा है प्रपन्न, उनका एक किताब है प्रपन्नामृत, टोटल सरेंडर, भगवान के समर्पण रहना। और समर्पण का मतलब है कि अपने स्वयं की कोई चिंता नहीं करना, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे, रक्षति कृष्ण इति विश्वास, कृष्ण इज माई मेंटेनर, कृष्ण इज माई एवरीथिंग। तो माधवेंद्रपुरी वहां बैठे हुए थे, पुजारी ने प्रसाद निकाला, ऑफरिंग बांट दिया या खा लिया जो भी है सब। और उसके बाद में रात को पुजारी को स्वप्न आया और सपने में गोपीनाथ जी प्रकट हुए और बोले उठो पुजारी कर द्वार विमोचन, खीर एक राखिया छे सन्यासी कारण। आपको पता नहीं है मेरी चालाकी के कारण वो पर्दे के पीछे मैंने एक खीर का बर्तन रखा है, आप ये खीर लेकर जाओ। और वो देखो मार्केट में एक महान भक्त बैठे हैं जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी, आप ये खीर जाकर माधवेंद्रपुरी को दो। पुजारी रात को उठे, स्नान किया और कर्टन खोला, आश्चर्य हुआ ये खीर कैसे रह गया। जनरली पुजारी बहुत होशियार होते हैं बांटने में या जो भी है ना, लेकिन यहां पर कैसे रह गया मैं देखने के बावजूद। तब वो खीर का बर्तन लेकर पुकारने लगे माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कहां पर है माधवेंद्रपुरी, ये देखिए गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चोरी किया है। तब माधवेंद्रपुरी बाहर आए, बोले मैं माधवेंद्रपुरी हूं, क्या बात है? बोले ओ आप माधवेंद्र पुरी हो, दंडवत दंडवत प्रणाम करने लगे। माधवेंद्र पुरी ने भी दंडवत किया, देखो भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया। यहां पर प्रभुपाद जी सॉरी कृष्णदास कविराज बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, पुरी र लागे र खीर कैला चूरी अतएव नाम हैला खीर चोर हरि। भगवान ने अपने भक्त के लिए चोरी किया इसलिए उनका नाम हो गया खीर चोर हरि या खीर चोर गोपीनाथ। अगर आप शुद्ध भक्त हैं तो भगवान आपके लिए चोरी करते, जनरली भगवान माखन चोरी करते हैं वृंदावन में, लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन यहां और भी ज्यादा ऊंचा रस है कि भगवान भक्त के लिए चोरी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम उस स्तर पे नहीं है इसलिए हमें अपने आप के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी अगर हम बैठे रहेंगे भगवान चोरी करेंगे तो 2-3 दिन तक कुछ आएगा ही नहीं। या तो पुजारी से कॉन्टेक्ट रखना चाहिए या गोविंदास में जो भी। यहाँ का भी खीर बहुत अच्छा है, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ थोड़ा। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी वो खीर का आस्वादन करने लगे। वो खीर इतना अच्छा था कि माधवेंद्र पुरी ने पूरा ही खीर खा लिया, पूरा बर्तन एक साथ खा लिया। और फिर यही नहीं, खीर इतना अच्छा था कि वो खीर के बर्तन को भी वो धोकर अपने पास में रखा, उसको तोड़ के अपने बैग अपने कपड़े में बांध के रोज थोड़ी सी मिट्टी खाते थे। सोचिए अगर मिट्टी इतनी स्वादिष्ट है तो खीर कितने स्वादिष्ट हो। आप में से कितने भक्तों ने वो खीर आस्वादन किया, हाथ ऊपर करें। हरी, जिन्होंने नहीं किया आप जरूर जाइए, जरूर जब भी अवसर मिले, या आप नहीं जा सकते तो किसी को बताइए खीर लाने के लिए, बहुत टेस्टी खीर। जस्ट याद करके ही मुझे आनंद हो रहा है। एब्सोल्यूट लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है स्मरण में और टेस्टिंग में। तो माधवेंद्र पुरी अब मन में सोचने लगे, भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी की है, अब ये बात सबको पता चल जाएगी और सब लोग मेरी प्रसिद्धि करेंगे, सब बोलेंगे ओ माधवेंद्र पुरी आप ही वो भक्त हो, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया, सब प्रणाम करने लगेंगे। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि ये अच्छी चीज नहीं है, ये शुक्र एरा विष्ठा है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, ऐसा सोच के वो चले गए। अभी देखिए अगर मेरे जैसा कोई जीव होता सोचता कि अगर भगवान ने मेरे लिए कुछ किया तो उसकी फोटोग्राफ लेनी चाहिए। नहीं, जैसे मैं 1977 में प्रभुपाद से मिला था, कुछ उस समय तो उतने मोबाइल्स नहीं होते थे, कैमराज उतने नहीं थे, नहीं तो मोबाइल होता तो मैं सोचता चलो फोटो खिंचा लो, मैं प्रभुपाद के पास बैठा हूं, हम अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। और आजकल के जमाने में सोचते चलो एक ईमेल भेजना चाहिए, देखो भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी किया। लेकिन सच्चा भक्त क्या सोचता है कि मैं सेवा करूं और किसी को पता ही नहीं चले, सिर्फ भगवान को पता चले। ओनली कृष्णा शुड बी प्लीज्ड एंड आई मे और मे नॉट रिसीव रिकॉग्निशन, मुझे प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं और कृष्ण परमात्मा है, ही नोज एवरीथिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। परमात्मा का कैमरा तो हमेशा ऑन है, ऑडियो वीडियो थिंकियो सब जो भी आप बोल रहे हो सोच रहे हो सब भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए भक्त को 24 घंटे यही सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण मेरे को सुपरवाइज कर रहे हैं, कृष्ण मेरे हृदय में। और इस भावना से हमेशा पुकारना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे एक भक्त जब भगवान के लिए खीर बनाते हैं या भोग बनाते हैं तो सोचते हैं सबसे अच्छा बनना चाहिए खीर, अगर एकदम पतला दूध भगवान को अर्पण करें तो उतना टेस्टी नहीं होता, हम सोचते हैं गाढ़ा हो और गाढ़ा हो। या जो भक्त चंदन घिस रहे हैं सोच रहे हैं और भी अच्छा घिसे और भी अच्छा घिसे, क्योंकि और घिसने से उसकी सुगंध बढ़ जाती है। ऐसे हम जो 16 माला जप करते हैं, जो रोज सुबह 2 घंटे जप करते हैं, उसकी क्वालिटी ये अमृत केली खीर की तरह होनी चाहिए, कि उसमें गहराई होनी चाहिए, उसमें त्रिनादपि सुनी चाहिए न कि कपूर होना चाहिए, और उसमें न धनम न जन्म का थोड़ा काजू और किशमिश होना चाहिए, और आई नंद तनुजा इस प्रकार के कुछ इलायची होनी चाहिए। तो ये श्लोक को याद करते हुए हमें हरि नाम लेना चाहिए। कई बार हम जप करते हैं, जैसे आज मुझे निगड़ी मंदिर में क्लास देना था 8:30 से 9:30 और फिर यहां आना था, तो मैं जब जल्दी जल्दी कर रहा था, मैं सोचा था जल्दी जब पूरा हो जाए, हरे कृष्ण 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 हरे, पूरा हो गया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, आई एम लिबरेटेड फ्रॉम चैंटिंग, अभी मैं मुक्त हो गया बस। फिर रास्ते में मेरे को आनंद लीला प्रभु कार में लेकर आ रहे थे, और फिर मुझे थोड़ा फ्री टाइम था, मैं सोच रहा था कि आज मैंने जप तो कर लिया लेकिन क्या कृष्ण खुश हुए उससे, क्या कृष्ण को अच्छा लगा? अगर मुझे कृष्ण को अर्पण करना है तो जप में वैसा ही गुण होना चाहिए जैसे अमृत केली खीर में, उसमें गहराई होनी चाहिए, उसमें प्रार्थना होनी चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए, उसमें बोलते समय आंखों में आंसू होने चाहिए। नयनम गलद अश्रुधारय वदनम गदगद हृदय पुलक्य निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहे न भविष्यति। आपके नाम लेते आप बोलोगे प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं, अगर असंभव होता तो चैतन्य महाप्रभु क्यों बोलते? एटलीस्ट हमें प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यू शुड एम फॉर द हाइएस्ट, सबसे ऊंचा लक्ष्य करना चाहिए। आप चंद्रमा तक का प्रयास करोगे तो कम पेड़ के डाली तक तो पहुंच सकोगे। वी शुड एम, वेन विल आई बी एबल टू चैंट कभी हबे बोलो से देना मार, कब वो दिन आएगा जब मैं हरि नाम शुद्ध रूप से लूंगा। तो हर रोज जब शुरू करने से पहले श्री गुरु श्रील प्रभुपाद और सब आचार्यों को याद करना चाहिए, स्पेशली षड गोस्वामी, जिनको याद करते ही सारे बाधाएं दूर हो जाते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचाई गोसाई कोरी चरण वंदन जहां हुईते विघ्न नाश, सब विघ्न सब ऑब्स्टिकल दूर हो जाते हैं हरिदास ठाकुर को याद करने से। और एक सीक्रेट है जिसको जब जिसको याद करने से जब अच्छा होता है, मैं बताऊं आपको रहस्य, मैं अगले रविवार बताऊंगा ठीक, लेकिन अभी बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अगले रविवार तक मैं जीवित रहूं कि नहीं, है ना। सीक्रेट है कि जब आप नाम जप करते हो तो हर एक मोती पे हर एक बीड़ के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान कर। ये बात आपको ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रवचन में भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि विद एवरी बीड यू शुड टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और इसको बात को भक्ति विनोद ठाकुर बताते अपने भजन में, दयाल निताय चैतन्य बोल नाचरया मर्म, गौर निताय को याद करने से सब अपराध दूर हो जाते हैं। क्यों? ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं, गौर निताय को याद करते ही सारे अपराध दूर हो जाते हैं। इसलिए नाम जप के पहले हर एक माला की शुरुआत में हमें पुकारना चाहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, क्योंकि पंच तत्व को याद करते ही सब ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाते। कभी कभी हम जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं लेकिन पंच तत्व को याद नहीं कर रहे होते। हम श्री कृष्ण चैतन्य इसलिए बोल रहे हैं बहुत खुशी से क्योंकि माला पूरी हो गई। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब वन मोर स्टेप टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल 16 राउंड्स, है ना। बट एक्चुअली हर एक माला के एंड में मानसिक रूप से आप चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास ठाकुर इनको प्रणाम कर सकते। प्रे बेग प्लीट क्राई फॉर मर्सी मर्सी मर्सी, नाम जप मतलब पुकारना दया करो ठाकुर जी, गोपीनाथ कुंज बिहारी गौर निताई वृंदावन चंद्र दया करो दया करो दया करो दया करो। जब आप बार बार पुकारोगे तो दया होगी। तो छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है वैसे पुकारना चाहिए, नहीं प्रभुपाद व्हाट डस प्रभुपाद से शुड क्राई लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। बच्चे कैसे रोते हैं अभी आपको, ये आज क्लास स्पेशल है क्योंकि कोई बच्चे की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन जनरली जब मैं प्रवचन करता हूं तो तुरंत एक इलस्ट्रेशन मिल जाता है। अब बच्चे जो माताएं हैं जानते हैं, बच्चा अगर ऐसे ही रोए हाँ तो कुछ नहीं होगा, बच्चा दो बार नहीं टू क्राई क्राई कंटिन्यूअसली, अगर बार बार रोएगा तो मां उसको गोद में उठाएगी। तो अगर आप हरे कृष्ण आप जप कर रहे हैं और आप पुकार नहीं रहे तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है ही इज हैप्पी आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम, चलो लेट हिम एंजॉय दिस। यू हैव टू प्रे कृष्ण प्लीज आई एम फॉलन इन टू दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, प्लीज पिक मी अप फ्रॉम दिस ओशन, मुझे भवसागर से बाहर निकालो गोपीनाथ कृष्ण प्लीज मुझे बाहर निकालो। दैट इंटेंसिटी नहीं तो क्या हो, जैसे अभी मेरे को देखिए मुझे 20 साल हो गए इस्कॉन में सेवा करते 24 साल, लेकिन अभी तक मैं जप कर रहा था लेकिन मैंने कभी जप पे ध्यान नहीं दिया कि भगवान को पुकार रहा हूं कि नहीं। 3-4 साल पहले मेरे को एक काफी डेंजरस बीमारी हो गई थी, मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी थी और डॉक्टर्स बता रहे थे कि गारंटी नहीं है कि वापस आएंगे कि नहीं ये शरीर में। तो उस ऑपरेशन के बाद जब मैं वापस आया यही शरीर में आया तब मैंने निश्चय किया कि अब मुझे अपना जप सुधारना है. आई हैव टू वर्क बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स आई हैव. कोई गारंटी नहीं है. आपने सुना यहां से निगड़ी आश्रम में एक अच्छे भक्त, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी रोहिणी तनया प्रभु, जिनकी उम्र सिर्फ 32 वर्ष थी और करीब एक साल पहले डॉक्टर ने बताया उनको कि उनको टर्मिनल कैंसर हो गया, बोन कैंसर. ऑफकोर्स कुछ ट्रीटमेंट्स ट्राई किए उन्होंने, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कार्य होता है. और 2 महीने पहले मार्च 2 को वो शरीर त्याग कर दिया. तो क्योंकि उन्होंने पहले से ही नाम जप पे बहुत अभ्यास किया था, इसलिए आखिरी दिनों में भी जब उनको इतना कष्ट हो रहा था, मुझे डॉक्टर्स बता रहे थे कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति पागल हो जाता है. जो लास्ट स्टेजेस होते हैं बोन कैंसर के, उसमें व्यक्ति का माइंड डिरेंज्ड हो जाता है, पागल हो जाता है, वो को पता नहीं होता है. लेकिन क्योंकि रोहिणी तनया प्रभु, हालांकि वो मेरे छोटे भाई के समान है, मैं उनको शिक्षा गुरु मानता हूं, क्योंकि वो अपने उदाहरण से मुझे दिखा रहे थे कि कैसे कष्ट के समय भी भगवान का नाम लेना है, भगवान का आश्रय लेना है. इसलिए 2 दिन पहले, शरीर छोड़ने 2 दिन पहले, उनके गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको फोन पे उपदेश किया मायापुर से. तो जो महाराज उनको इनकरेज करने के लिए कुछ बोल रहे थे, और जैसे कुछ सुनते तो वो बोलते जय जय प्रभुपाद जय. अभी ये उस व्यक्ति की अवस्था, इसका शरीर बिल्कुल पीला हो गया, कमजोर हो गया, बस सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. डॉक्टर्स बोल रहे थे आज भी जा सकते, लेकिन उसके मन में एक उत्साह था, उसके मन में एक इंटेंसिटी थी. उसको पता था कि मैं कृष्ण के चरणों में हूं. 5 मिनट बाद देवामृत स्वामी महाराज ने उनको जीबीसी मीटिंग से बाहर आकर उनको फोन किया और उनका उत्साह बढ़ाया और फिर से वो और खुश हुए. और 10-15 मिनट बाद मैं दूसरे शहर में था और वहां से मैंने उनको फोन किया, और तो उनके मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन वो भक्त बता रहे थे उनके आंखों में आंसू थे और वो बोल रहे थे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे कृष्ण के चरणों में स्थान दिया, मुझे कृष्ण के चरणों में लिया. और इस तरह से फिर उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं बंबई में शरीर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरी भक्ति शुरू हुई गौर निताई आश्रम में निगड़ी में, मैं डीटीज के सामने शरीर छोड़ना चाहता. तब डॉक्टर्स ने बताया कि इम्पॉसिबल है, अगर वहां ले जाएंगे तो रास्ते में मृत्यु हो जाएगी. लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी इसलिए उनको ले गए. शाम के 7 बजे पहुंचे, जब गौर आरती शुरू हुई, 7:15-7:30 तक वो रहे, और नरसिंह प्रेयर्स के बाद भगवान के सामने ही उनका दर्शन करते हुए उन्होंने देह त्याग कर दिया. और सारे भक्त गा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जो भक्त आयुष्य भर जीवन भर नाम जप का अभ्यास अच्छी तरीके से करते हैं, उसके लिए अंतिम समय बहुत आसान हो जाता है. तो मैं भी पिछले 3-4 साल से, जब से मेरे को पता चला ये, जब मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ, तब से मैं हमेशा नाम जप पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूं. और मुझे सफलता अभी भी नहीं मिली है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं. भक्ति में प्रयास करते रहना है, प्रयास करते 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 एक दिन श्री कृष्ण भगवान की दया से सफलता मिल जाएगी. जैसे आपको कहानी मालूम है कि एक बार समुद्र के किनारे चिड़िया ने कुछ अंडे डाले थे, और बाद में जब चिड़िया लौट कर आई तो देखा तो सब जगह पे पानी पानी फैल गया, सब अंडे पानी में. तो चिड़िया ने मांगे कि मेरे अंडे वापस कर दो, लेकिन समुद्र ने नहीं दिए. चिड़िया बोली ठीक है आप नहीं दे रहे, मैं समुद्र खाली कर दूं. तो चिड़िया अपने चोंच से 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद ऐसे खाली कर रही थी. अभी आप सोचिए कि चिड़िया के चोंच में कितना पानी आता है, 0.5 लीटर 1 लीटर मे बी 10 ml, और समुद्र में कितना पानी होता है, 10,000 लीटर 10,00,000 लीटर 10 करोड़ लीटर असंख्य. लेकिन फिर भी चिड़िया को उत्साह था कि मैं प्रयास करूंगी. और ये देखकर गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी जो भगवान के वाहन है, उन्होंने आदेश दिया समुद्र अंडे वापस कर दो. यस सर, जी हजूर, तुरंत वापस कर. ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं, नाम जप में मन नहीं लग रहा, मन भाग रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं, हम प्रयास करते रहेंगे, और एक दिन गौर निताई प्रसन्न होकर बोलेंगे कि इसको शुद्ध नाम मिल जाए, इसके अनर्थ सब दूर हो जाए. इट्स ओनली द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. जैसे भक्ति तीर्थ महाराज ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, वो इस किताब में बताते हैं कि हम जो ये 16 माला जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, एक्चुअली ये चीजों से कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। कृष्ण प्रेम और भी दुर्लभ है, लेकिन हम ये चीज करें तो भगवान कृष्ण प्रेम दे देते हैं। क्यों? उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा बोलता है अपने पिताजी को, पिताजी पिताजी मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल में खेलना है, साइकिल चाहिए। पिताजी बोलते हैं ठीक है, अभी ये अप्रैल मई में एग्जाम है, आप अच्छी पढ़ाई करो, 2 महीना आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो साइकिल मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते हैं और 2 महीने बाद साइकिल मिल जाता है। अभी ऐसा नहीं कि पढ़ाई 2 महीने करने से साइकिल आ गई है, साइकिल तो पहले से थी, है ना। और 2 महीने पढ़ाई करने से कोई ऐसे नहीं कि 1000 रुपए मिल जाते, नहीं। लेकिन पिताजी परीक्षा ले रहे थे कि बच्चा सिंसियरली ट्राई कर रहा है कि नहीं, और बच्चा अगर ट्राई कर रहा है तो पिताजी फिर साइकिल दे देते। ऐसे भगवान कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि आप 16 माला जप कर रहे हैं कि नहीं, 4 नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं। और वो कृष्ण प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन भगवान उसको छोटी सी कीमत पर दे रहे हैं। जैसे एक डिवोटी बता रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो भगवान कंडीशन रखते हैं, पहले शरण में आओ फिर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बस आप कृष्ण नाम लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बस आप नाम लो। आप पापी हो तापी हो कोई बात नहीं, पापी तापी यत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, सबका उद्धार कर। और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो नाम लेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। नित्यानंद प्रभु जो नाम नहीं लेता उसके पीछे पीछे जाके बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो एक बार, हरि नाम लो। दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड गौर निताई। तो अंत में ये माधवेंद्रपुरी की कहानी मैं समाप्त करना चाहता हूं। माधवेंद्रपुरी ये जो खीर को टेस्ट करके फिर सोचने लगे यहां पर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पे सब लोग मेरी प्रसिद्धि कर रहे हैं, मैं अब ये जगह को छोड़कर जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा चंदन लाने के लिए। जगन्नाथपुरी में सारे पुजारियों सबको मालूम पड़ गया, सब माधवेंद्रपुरी को देखकर बोले आप ही हो माधवेंद्रपुरी, हाँ हमने सुना भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया। उस जमाने में ईमेल नहीं था, फिर भी समाचार फैल गए। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे आप मैं तो प्रसिद्धि नहीं चाहता। फिर उन्होंने उन पुजारियों को बोला मुझे 40 किलो चंदन चाहिए, भगवान गोपाल जी को गर्मी लग रही है, मुझे भगवान गोपाल के लिए चंदन चाहिए। तो पुजारी ने उनको चंदन दिया और 2 असिस्टेंट्स दिए चंदन उठाने के लिए, कई पेपर्स दिए कागजात, जिसे रास्ते में उनको जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं वो परेशान नहीं करें। और माधवेंद्रपुरी ये सब सामग्री लेकर वापस वृंदावन की ओर निकल पड़े। इस बार निकलते समय फिर से वो खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में आए और खीरचोर को देखकर नाचने लगे, गाने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पुजारी ने देखा तो तुरंत पुजारी खीर का बर्तन लेकर उनको दे दिया, इस बार बिना मांगे दे दिया। क्यों? पुजारी सोच रहे थे रात में फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, यहां लिखा नहीं है। तो पुजारी ने उनको स्वीट राइस दे दिया और माधवेंद्रपुरी रात को सो गए उसी मंदिर में। अब उनको तीसरी बार स्वप्न आया, इस बार स्वप्न में गोपाल जी आए, बोले माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी सुनो मेरे को चंदन मिल गया है, आप ये चंदन यहीं पर घिस लो और आप गोपीनाथ को अर्पण कर लो, क्योंकि गोपीनाथ में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अगर गोपीनाथ को चंदन लगा रहे हो तो मेरी गर्मी भी दूर हो जाएगी। भगवान की लीला, जैसे यहाँ कुंज बिहारी है, बंबई में गोपीनाथ है, गिरिधारी है, रास बिहारी है, मायापुर में राधा माधव है, या अभी वृंदावन चंद्र आएंगे, तो भगवान एक ही है। जहां पर भगवान की इच्छा हो, जहां पर गुरु का आदेश हो, वहीं पर सेवा करना। भगवान सब जगह से सेवा स्वीकार कर सकते, भगवान एक ही है। माधवेंद्रपुरी उठे, उनको आश्चर्य हुआ, नींद से उठते ही वो पुजारी के पास गए और बोले, गोपीनाथ के पुजारी को बोलने लगे कि ये सब चंदन आपके ड्यूटीज के लिए, आप ये सब गोपीनाथ को अर्पण कर दो, और मेरे गोपाल जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये सुन के गोपीनाथ के पुजारी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है मैं और हम भी दो असिस्टेंट्स देंगे आपको। माधवेंद्रपुरी के पास दो व्यक्ति थे और गोपीनाथ के दो, इस तरह चार भक्त फुल टाइम सेवा में थे, दिन रात चंदन घिस रहे थे। और ऐसे करते करते जब तक चंदन पूरा खत्म नहीं हुआ तब तक माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ मंदिर में रहे और रोज खीर खाते रहे। ये लिखा नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि आप खीर चोर गोपीनाथ मंदिर में रहोगे और खीर नहीं खाए हो ही नहीं सकता। इसके बाद माधवेंद्रपुरी वहां से जगन्नाथपुरी चले गए। ये कहानी जो मैं आपको बतला रहा था ये रेमुना में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं। नित्यानंद, जगदानंद, गोविंद, दामोदर और ब्रह्मानंद, ये पांच भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, रस्ते में रेमुना में रुके हैं। और उस दौरान ये कथा चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को सुनाकर कह रहे हैं और बोले, नित्यानंद तुमी करह विचार, हे नित्यानंद आप विचार करो, पूरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। ये पूरे जगत में माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? दुग्ध दान छले कृष्ण जार दर्शन दिल, भगवान ने उसको पहली बार दर्शन दिया। पहली बार कब दिया? गोविंद कुंड के पास में। और तीन बार स्वप्न आसी, तीन बार स्वप्न में आए। पहली बार कभी, मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो। दूसरी बार, मुझे गर्मी लग रही चंदन ले आओ। तीसरी बार, चंदन गोपीनाथ का। आप ये तीन बार जानते हैं इसका मतलब आपको कोई स्वप्न नहीं आया लेक्चर के बीच में, आप ध्यान से सुन रहे थे, ये पास दी टेस्ट। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोले कि माधवेंद्र पुरी और ये चंदन लीला से हम क्या सीखते हैं, व्हाट इज द लेसन, कि भक्त वो है जो भगवान के लिए कष्ट सहन करे। भगवान बोले जाओ चंदन लेकर आओ तो लेकर आना, भगवान बोले ठीक है यहीं पर अप्लाई कर दो। माधवेंद्रपुरी ये नहीं बोले अगर यहीं पर अप्लाई करना था तो पहले ही बोल देना चाहिए था, मुझे क्यों इतना तकलीफ दिया, नहीं अननेसेसरीली जाने आने का खर्चा हुआ है, यू नो मैं ईमेल भेज देता या मैसेज भेज देता। भगवान स्वराट है, भगवान बोले चंदन बनाओ, भगवान बोलेंगे चंदन वहां पर अर्पण कर दो, ठीक है। भगवान बोले चंदन फेंक दो, जो भगवान चाहे। असली सेवा पदरतम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतम करो तुवा, whether you embrace me or make me broken hearted by not being present before me, you are my lord unconditionally। आप मुझे चाहे गले लगाओ या ठुकरा दो, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका सेवक। और एक चीज इस कथा से सीखने को मिलती है कि भगवान भी अपने भक्त के लिए कष्ट सहन करते हैं, भगवान भी अपने भक्त के लिए चोरी करते हैं। जार लागे गोपीनाथ खीर कैला चोरी, अतएव नाम होइला खीर चोर हरि। माधवेंद्र पुरी मुसलमानों के राज्य से गुजर रहे थे जहां पर बहुत सारे बाधाएं आते थे, कई बार उनको रास्ते में रोका जाता था, टैक्स कलेक्टर्स रोकते थे, उनको पेपर्स दिखाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी माधवेंद्र पुरी ये कष्ट उठा रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसे फेमस कहानी है कि एक बार भगवान कृष्ण को सरदर्द हो गया और नारद मुनि ने पूछा कि सरदर्द कैसे दूर होगा, उनको बताया गया कि मुझे अपने शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल चाहिए अपने सिर पे लगाने के लिए। तो नारद मुनि कई भक्तों के पास गए, सबने कहा हम अपने चरणों की धूल नहीं दे सकते, इसे हमको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो गोपियों के पास गए तो गोपियां बोले ले जाओ कितना चाहिए, होलसेल ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मालूम है क्या होगा इससे, हाँ हमें नरक जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का सरदर्द दूर होना चाहिए। तो यही गुण माधवेंद्रपुरी में है कि कृष्ण की गर्मी दूर होनी चाहिए, चाहे मेरी गर्मी बढ़ती रहे, मेरे को कितना कष्ट भी उठाना पड़े। दिस इज कॉल्ड लव। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम। अपने आप के लिए जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास करता है वो कामनाएं है नहीं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो गर्मी को दूर कर रहे हैं, अपने अपने घर में एसी चला रहे हैं, तो नेचुरली अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन भक्त वो है जो भगवान के लिए चंदन लगाए, भगवान के लिए मंदिर निर्माण कर, अपने आप की इच्छाएं, अपने आप के तकलीफों को सहन करना और कृष्ण को प्राधान्य देना, उसको इंपॉर्टेंस देना, ये भक्ति है। और अंत में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे माधवेंद्रपुरी का गुण क्या था, परम विरक्त मौनी उदासीन, विरक्त रहते थे, उदासीन रहते थे, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। और कोई ग्राम्य वार्ता होगी, कोई कृष्ण कथा के अलावा दूसरी बातचीत होगी, इसलिए किसी को साथ नहीं रखते। माधवेंद्रपुरी के पास एक पैसे भी नहीं थे जब वो चंदन लाने के लिए गए थे, बस भगवान के ऊपर भरोसा था। ऐसे हमारे डिवाइन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, और वो भी कोई परिवर्तन होना आसान नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद कष्ट सहन करते गए माधवेंद्रपुरी की तरह पूरे विश्व में चंदन बांटने के लिए। हरि नाम चंदन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेम की प्रगाढ़ता है कि जब किसी के अंदर प्रेम की प्रगाढ़ता होती है तो वो कष्ट सहन करता है। जैसे एक माता जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे के लिए माता कितनी तकलीफें सहन करती है, ऐसे भक्त भगवान के लिए कष्ट सहन करते। ऐसा बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु एक्सेसी में आ गए और उन्होंने एक श्लोक बोला। आपको मालूम है कौन सा श्लोक है? ये वही श्लोक है जो माधवेंद्रपुरी ने अपने आखिरी क्षणों में बोला था। ये वही श्लोक है जिसका अर्थ सिर्फ 3 व्यक्ति जानते हैं, एक राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी। और वो श्लोक क्या है? ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य हृदयम त्वद अलोक कातरम दयित भ्रम्यति किम करोमि अहम्। ओ माय लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, ओ मास्टर ऑफ मथुरा, वेन शेल आई सी यू अगेन? बिकॉज ऑफ माई नॉट सींग यू माई एजिटेटेड हार्ट हैज बिकम अनस्टडी। ओ मोस्ट बिलवेड वन, वॉट शेल आई डू नाउ? इसका अनुवाद है, राधा रानी बोल रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, हे दयालु स्वामी, हे मथुरा के नाथ, कब मुझे आपके दर्शन होंगे? आपको नहीं देखने के कारण मेरा मन अस्थिर हो रहा है, मेरा हृदय अस्थिर हो रहा है। हे प्रिय नाथ, मैं क्या करूं? ये श्लोक को बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में आकर जमीन पर गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उनको गोद में उठा लिया और फिर महाप्रभु रोने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे और बोलने लगे, आई दीन आई दीन आई दीन आई दीन आई दीन आई दीन, बोले बार बार, कंठे ना नीश्वर वाणी नेत्रे अश्रुधार। इस तरह आई दीन बोलते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे और उनके शरीर में कंपन होने लगा, जो भी अष्टविकार सात्विक अष्टविकार प्रकट होने लगे। और फिर बहुत से लोग एकत्र हो गए तो महाप्रभु को लगा कि वो बाहरी चेतना में आ गए। फिर इसके बाद आरती खत्म हुई और पुजारी ने भगवान को विश्राम दिया, रेस्ट किया। उस समय पुजारी क्या बाहर लेकर आए? खीर। ये खीर अभी प्रोग्राम के बाद सबके लिए अवेलेबल है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मानसिक रूप से मेबी सम मेबी इफ यू गो टू रेमुना देन यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को खीर दिया, महाप्रभु को 12 बर्तन दिए, 12 मटके खीर के दिए, लेकिन महाप्रभु ने सिर्फ 5 ही रखे क्योंकि 5 ही भक्त थे, और 7 वापस कर दिए। महाप्रभु दिखा रहे थे कि दूसरों को भी देना चाहिए, नॉट वरी अबाउट योर ओन सेल्फ। और फिर उसके बाद रात को रह के सुबह मंगल आरती दे के वो निकल पड़े। तो समय हो रहा है कंक्लूजन में, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली एक और बात मैं बताना भूल गया, जब गोपीनाथ का महाप्रसाद लेकर आए तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं जब गोपीनाथ को खीर गोपीनाथ का खीर महाप्रभु को दिया तो महाप्रभु ने वो खीर पहले ही खा लिया था, देने से पहले ही। ये कैसे? गोपीनाथ के रूप में खा लिया था। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हमें जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के अंत में बोलते हैं, यही तो आख्या ने कहिला दोहर महिमा, आई हैव डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्यस अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज एंड द हाईएस्ट लिमिट ऑफ लव ऑफ गॉड। मैंने गोपाल जी की महिमा बता दी, गोपीनाथ जी की महिमा बता दी, और माधवेंद्रपुरी की भक्त की महिमा, भगवान की महिमा, यही श्रीमद भागवत है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। अभी कुछ देर पहले मैं महाविष्णु महाराज जो पिछले साल भगवत धाम चले गए उनकी किताब पढ़ रहा था, और महाविष्णु महाराज बोलते हैं कि ये श्रीमद भागवत का पाठ ही है सबसे बड़ी दवाई है। पिछले साल जनवरी में वो वापस भगवत धाम चले गए. उनके जाने से 15 दिन पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था. वो नासिक में थे और उनको बहुत कष्ट हो रहा था. डॉक्टर्स बता रहे थे कि उनको बहुत पेनफुल स्थिति है, लेकिन उस दर्द में भी वो श्रीमद् भागवत के श्लोक गा रहे थे क्योंकि उनको प्रेम था भगवान से. तो ये भक्त की महिमा है कि उनका प्रेम किसी भी स्थिति में रुकता नहीं है. और कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं, श्रद्धा युक्त इह इहा जय सुने. जो भी ये कथा को श्रद्धा से सुनता है, श्री कृष्ण चरणे से पाई प्रेम धन, उसको श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है. श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. तो हर अध्याय के अंत में कविराज गोस्वामी रूप और रघुनाथ अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं. हम भी 2 मिनट आंख बंद करके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और माधवेंद्र पुरी से प्रार्थना करें कि हमें भी ये कृष्ण प्रेम की खीर का आस्वादन करने का अवसर मिले. नरसिंह भगवान से भी प्रार्थना करें, प्रहलाद महाराज से, कि भक्ति के सारे बाधाएं दूर हो जाएं और हम शुद्ध हरि नाम टेस्ट कर सकें.